ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ $1500 ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ brampton.ca/community-safety।
خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام سے ہم آپ کو ریڈیو پروگرام مسیح کی آواز وائس آف کرائسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار صبح 8 to 9 تک کرائسٹ آر کنگ لوتھرن چرچ مسیساگا کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی بدولت آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی زندگی کے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ آج کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
ریڈیو مسیح کی آواز ٹورانٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور جلالی نام سے آج کے پروگرام کو بھی شروع کرتے ہیں۔ آج فروری کی 11 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا ہوسٹ اور جناب پادری جیمز لوک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت بہت سلام آداب اور دلی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہر اتوار کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند نے ہمیں اور آپ سب کو زندگی تاکہ ہم ہر اتوار آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹ سکیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے اور جتنی دنیا میں برائیاں بڑھ چکی ہیں، جب تک ہم خداوند کی طرف نہیں آتے ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگ سکتے اور اپنی عاقبت کو سنوار نہیں کر سکتے اور آنے والی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ پروگرام ہر اتوار صبح 8 to 9 تک آپ کی خدمت میں لوتھرن چرچ آف کینیڈا کے تعاون سے 770 بینڈ پر ٹورانٹو سے نشر کیا جاتا ہے۔ آپ پروگرام کو eawaz.com کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اور فیس بک کے اوپر www.masikiawaz.ca آپ زوم کے اوپر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ زوم آئی ڈی نمبر میں ہر ہفتے دہراتا ہوں 6800107261 اور لوکل ٹیلی فون نمبر، اگر آپ ٹیلی فون کے اوپر ہمارے پروگرام کو سننا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے۔ ٹیلی فون نمبر ہے 6478724900 اور اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہو تو connect@masikiawaz.ca۔ میرا ٹیلی فون نمبر 6473390397 اور جناب پائی صاحب کا ٹیلی فون نمبر 4164542581 اور ہمارے چرچ کا ٹیلی فون نمبر ہے 9058228931۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بائبل مقدس کی کاپی چاہیے اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، انگلش میں، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو جلدی آپ کی بائبل مقدس کی کاپی آپ کو رسال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر چرچ میں چھوڑ سکتے ہیں، پادری صاحب سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، کسی لینگویج میں بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر چرچ میں آپ نے میسج چھوڑنا ہو تو آپ چرچ میں بھی ٹیلی فون کر کے میسج چھوڑ سکتے ہیں اور چرچ کا نمبر میں ایک دفعہ پھر آپ سے دہرائی دیتا ہوں آپ کے لیے 9058228931 8931। पिछले हफ्ते भी हमने अनाउंस किया था कि आपकी गोश गुजार करना चाहते हैं कि ये जो रेडियो प्रोग्राम है मसीह की आवाज, ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रेडियो स्टेशन पर नहीं, हम दूसरे चैनल पर जाएंगे, जिसके लिए आप eawaz.com के जरिए भी आपको पता चल सकता है, और आप जूम के जरिए भी वही नंबर होगा, आपसे हम रابطہ कर सकते हैं, और फेसबुक के जरिए भी हम आपसे रابطہ कर सकते हैं, और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं www.masikiawaz.ca। तो आप ये ना सोचिए, लेकिन ये दूसरे ट्रांसमिशन पे होगा, लेकिन आपसे जरूर हम दरख्वास्त करते हैं कि अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को, खुदा का जो काम है, इसे पादरी साहब और मैं इसी तरह आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इससे पेशतर कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दुआ करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जी पादरी साहब,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो हैं वो आलमे बाला पर लगाएं, खुदा से राबता कायम करें। और आप जानते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, जो मसीहत का खुदा है, जो जिंदा खुदा है, जो बरहक है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने नाम हमें दे रखे हैं, वो लोग तंदुरुस्त हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको कोई दुआ की जरूरत है तो हमसे राबता कायम करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपने अपना नाम हमें देना है और हम आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत सारे लोग मैंने जैसे बताया कि तंदुरुस्त हो चुके हैं, सो आइए हम दुआ में उन सबको उनका शुक्र अदा करेंगे और खुदा से इल्तजा करेंगे कि वो बाकी मादा लोग जो हैं उनको भी तंदुरुस्त कर दे। आइए हम दुआ करें। खुदा खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हमें फख्र है कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं, और आए खुदा खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये हक बख्शा है कि हम तेरे बच्चे कहलाएं। आई खुदाओं खुदा हम शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के लिए, जिसके नाम से हम कहलाते हैं और जो जिंदा और आसमान पे मौजूद है और हमारी दुआएं सुनता है। खुदावन उसका नाम शाफी नाम है, उसके नाम में शिफा पाई जाती है। और जिस तरह ही हम लोगों की दरख्वास्त लेकर आए खुदावन तेरे तख्त के सामने जाते हैं, तो तू हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई नौखेज दीन के लिए, जिसको तूने बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया, उसका हार्ट बाईपास हुआ और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। इसी तरह से डिम्पल इमानुएल के लिए, जो न्यूजर्सी से ताल्लुक है, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। अदनान जो मैनचेस्टर से हैं, मैनचेस्टर यूके से, उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। आशर महमूद के लिए जो टेक्सला पाकिस्तान से हैं, उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। डैनियल भट्टी के लिए जो लाहौर पाकिस्तान से हैं, उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। उफाज राहील के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, उस बच्चे को भी तुमने बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। आई खुदा खुदा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी बीमार हैं, कुछ लोग रूहानी तौर पे, कुछ लोग जिस्मानी तौर पे बीमार हैं, लेकिन क्योंकि तेरा नाम शाफी नाम है, तेरे नाम में शफा पाई जाती है, और तेरे नाम से जब दुआ की जाती है तो लोग अच्छे हो जाते हैं। काशिफ अनवर के लिए दुआ करते हैं, जो लाहौर पाकिस्तान से है, उनके खानदान के लिए, संगम के लिए, मुस्कान के लिए, साइमा के लिए। क्या खुदाम खुदा, जबकि वो अपनी दोनों टांगे एक रिक्शा एक्सीडेंट में खो चुका है, तो आए खुदावन तुझसे मेहनत करते हैं कि उसकी टांगों को बहाल कर। कैन कामरान के लिए कि ये बच्चा जो ऑटिज्म में है, यूनाइटेड किंगडम में है, आए खुदावन खुदा उसके लिए दुआ करते हैं। आयत अली के लिए कि ये बच्ची जो 3 साल की है, और अल्कदान बांग्लादेश से इसका ताल्लुक है। टोरंटो में इसकी 3 सर्जरीज हो चुकी हैं, बख्शते कि उस पर भी रहम कर, उसके खानदान पर रहम कर। अर्नेस्ट सलीम के लिए दुआ करते हैं जो कराची पाकिस्तान से हैं, तो उनके लिए भी आए खुदा खुदा उनकी आई साइट को बहाल कर। डॉक्टर अफजाल फिरदौस के लिए दुआ करते हैं कि जो ह्यूस्टन टेक्सस से जिनका ताल्लुक है, आए खुदावन उनकी डायबिटीज जो है वो आए खुदावन उसको बेहतर करते हैं। डैनियल उजैर के लिए जो टेक्स पाकिस्तान से हैं उनके लिए दुआ करते हैं, आए खुदावन उनको भी बेहतर कर। अपने भाई जमशेद डीन के लिए दुआ करते हैं जो कि आए खुदावन हॉस्पिटल में है और आए खुदावन तेरा करना चाहता है, इसी तरह से आए खुदावन उसके खानदान के साथ भी हो। हम दुआ करते हैं प्यारी चौधरी के लिए आए खुदावन के, जबकि वो भी आए खुदावन गो के तूने उनको बहुत अच्छी उम्र दी है, लेकिन आए खुदावन खुदा वो जिस कश्मकश में है उनके साथ हो, उसके खानदान के साथ हो। आए खुदावन दुआ करते हैं उस बहन के लिए जो एक एक्स में है, आए खुदावन उनके घुटनों के दर्द को आए खुदावन दूर कर, उनकी बेटी के साथ हो। आए खुदावन उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उनकी बेटी जो है वो उसको कोई हार्ट एलमेंट है, आए खुदावन तेरे नाम से आए खुदावन उस बीमारी को दूर करते हैं। और आए खुदावन खुदा हम दुआ करते हैं तोती की बेटी के लिए, आए खुदावन जो कि पिशावर एबटाबाद में पाकिस्तान में है, आए खुदावन उनके लिए भी दरखास्त ही है कि आए खुदावन खुदा उसको तू संभाल के रख। ये तमाम दुआएं आए खुदावन तेरे हुजूर में लाते हैं और आए खुदावन तुझसे मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आए खुदावन खुदा हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क कैनेडा के लिए जिसमें हम आराम और चैन की जिंदगी गुजारते हैं। अपने इस मुल्क के लिए आए खुदावन हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे शहद और दूध रहता है, बख्शते ये मुल्क जो है जो तेरे नाम से कहलाता है, खुदावन और भी इस पे तेरी ब्लेसिंग्स हों। आए खुदावन खुदा हम शुक्रगुजार हैं अपने स्टूडियो के लिए AM770 के लिए, eawaz.com के लिए, हम उनके स्टाफ के लिए बहुत बरकत चाहते हैं और खुसूसन आए खुदावन आज के ऑपरेटर जो है उनके लिए हम बहुत बरकत चाहते हैं। आए खुदावन खुदा हम तमाम सुनने वालों के लिए शुक्रगुजार हैं और बख्शते कि आज के मैसेज के जरिए से, आज के पैगाम के जरिए से वो लोग जो है लोगों की जिंदगियां जो है वो तब्दील हो सके, क्योंकि तेरा कलाम जो है सच्चा बरकत है और लोगों के दिलों में वो सराहत करता है और आए खुदा उन खुदा असर करता है और आए खुदा उन लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। बाकी मांदा प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजार हैं आए खुदा उन खुदा, जबकि हम एक और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो आए खुदा उन खुदा तू इसमें तेरी पाक मसीह शामिल हो, ये मानते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में, आमीन
आमीन। खुदावन का कलाम सुने। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब काम का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ए हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा, जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामला की ताईद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया, लेकिन खुदावन अब तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा, वो रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावन मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावन तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। खुदावन की सिताइश करो जो सायून में रहता है, लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुशिश करने वाला उनकी उनको याद रखता है, वो गरीबों की फरियाद नहीं भूलता, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ आए खुदावन, इंसान गालिब होने ना पाए, قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو، اے خداوند ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر جانے، خداوند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ سامعین آئے خوبصورت زبور سنتے ہیں اور اس کے غور سے سنیں کہ خداوند کا کلام زبور کے ذریعے میں کیا بتانا چاہتا ہے۔
دینے تینوں اونا نو
سامعین، اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے تخت کے سامنے چلیں اور اس کے کلام کو خالد صاحب کے ذریعے سنیں. جس طرح ہم نے گیت سنا کہ اس کا تخت عبدالعباس کا قائم ہے اور اسی کے پاس ہم اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی پریشانیوں کو ہم اس کے قدموں میں لے کے آتے ہیں. آج کا جو میسج ہے خالد صاحب نے جو تھیم دی ہے، جیزس دی ہیلر، یسوع مسیح شفا دینے والا، شفا دے سکتا ہے، اسی کے متعلق ہم سنیں گے کہ آج خالد صاحب ہمیں خداوند کے کلام میں سے کیا بتاتے ہیں. اور یہ جو معجزات خدا نے ہم اب پڑھیں گے، آپ یقین کیجئے کہ یہ انسان کی عقل سے بالکل بعید ہیں، لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے. یسوع مسیح شافی ہے، شفا دینے والا ہے. آج کا میسج بھی شفا کے متعلق ہی ہے. آئے ہم پائی صاحب سے خدا من کا زندہ کلام سنیں. جی پائی صاحب،
بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج جو ہے اس کا عنوان جو ہے، اس کا میسج کا جو کیپشن ہے وہ ہے یسوع شافی ہے. یسوع شافی اس کا مطلب شفا جس کو ملتی ہے. شفا کس سے ملتی ہے؟ بیماریوں سے ملتی ہے. اور شفا کے لیے یسوع کا نام لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں شفا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع اس دنیا میں رہے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو شفا دی، اور آج بھی وہ ان کے نام سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. آئیے ہم پہلے لوکا رسول کی انجیل میں سے سنیں گے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 35 سے لے کے 43 آیت تک. لوکا رسول کا میں درخواست کروں گا ایلڈر صاحب سے کہ وہ ہمارے لیے یہ حصہ پڑھیں، 18 باب اور اس کی 35 سے لے کے اور 35 آیت تک. جی ایلڈر صاحب.
یسوع ایک اندھے بیکاری کو شفا دیتا ہے. یوں مرکوم ہے، جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اسے خبر دی، یسوع ناصری جا رہا ہے. اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی. خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.
ابھی آپ نے مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 18 باب اور 35 آیت سے لے کے 45 آیت تک، 35-43 آپ نے سنا ہے کہ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک اندھے کو شفا دیتے ہیں. इसीलिए आज का मैसेज जो है वो मैंने जैसे बताया कि यीशु शाफी है, यानी कि यीशु के नाम में शफा आपको मिल जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीनी जिंदगी में थे तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है इससे भरी पड़ी है कि किस तरह से उनको शफा मिली है और किस तरह से उन्होंने लोगों को जो बीमार हैं उनको शफा दी है। और ये बात जो है ये मैं आपके यही बात आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से वो शफा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने सब बीमारों को दी है। और पिछली दफा हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पत्रस रसूल जो है उनकी सास को उसको ठीक किया था, और जब उसको ठीक किया था तो बहुत सारे लोग जो थे उस टाउन के इर्द गिर्द के टाउन जो जितने भी थे वो सारे के सारे वहां पे लाइन लग गई थी, और वो जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तमाम प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी थी। आपको मैं शुरू में ही बताना चाहता हूं कि शिफा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं, या उनके नाम से अगर आप दुआ करें तो आपको शिफा मिल सकती है, आज भी मिल सकती है। और हमारे लोग जो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिस्सा नहीं मानते वो शिफा मुमकिन नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि गैर मसीही हैं और वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, और जब उनके लिए दुआ की जाती है तो वो गो के उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात नहीं माना है, वो फिर भी तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सबके खुदा हैं, सबके खुदा हैं, मेरे भी खुदा हैं, सिखों के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, लेकिन जब उनके नाम से दुआ की जाती है तो आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ईमान बहुत जरूरी है। और आज हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नाबीना शख्स है, यानी कि उसको अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसको शिफा मिलती है। और लिखा हुआ है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 35 आयत में कि चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। आपको मालूम है कि अंधे लोग जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, इंडिया में हम जानते हैं कि लोग भीख मांगते हैं, तो इसमें तो कोई वहां भी यही हालत थी। और हम ये भी जानते हैं कि ये लोग जो है अमीर नहीं होते, बेचारे गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई जरिया मुआश नहीं होता, यानी वो कुछ कमाश मा तो सकते नहीं है, सिर्फ भीख पे गुजारा करते हैं। और वो भीख पे जब गुजारा करते हैं तो वो सोसाइटी के सबसे गिरे हुए शख्स होते हैं, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, वो बेचारे राहों के किनारे मोड़ों पे बैठ जाते हैं और भीख मांगते हैं। और यहां पे हम यरहू का जिक्र जानते हैं कि यरहू जो है, यरहू का भी कुछ ऐसा ही स्टेटस है। यरहू का शहर जो है जिसको जेरिको कहा जाता है, उसका स्टेटस ये है कि वो दुनिया के क्या कहना चाहिए निचला तरीन शहर है दुनिया का, बल्कि वो यू नो इट इज बिलो सी लेवल, वो समंदर की सतह से भी नीचे है वो, लेकिन वो बड़ा पुराना शहर है जो हम जानते हैं कि ये, अगर आप जो लोग मेरे साथ फेसबुक या जूम पे हैं वो देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि 10,000 साल बिफोर क्राइस्ट ये शहर आबाद हुआ था, ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। आज भी ये शहर बहुत आबाद है, अगर आप अगर आपको मैं इसका नक्शा दिखाऊं तो ये इसराइल में, ये आपका डेड सी है, और डेड सी जो है वो भी 400 मीटर्स बिलो सी लेवल है, और ये इसके साथ ही 15 मिनट की ड्राइव पे जेरिको है, यानी कि यरहू है, जो कि इसी तरह से बहुत निचला है। लेकिन यहां से खुदावंद यीशु मसीह अब रवाना है यरूशलेम की तरफ। आप देखें यरूशलेम वहां से कुछ 30 मील के फासले पे है, और यरूशलेम जो है वो पहाड़ी के ऊपर, सो वो इस दुनिया के सबसे निचले शहर से और बहुत ऊंचे वाले शहर जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि हम ये हमारी हमारी ही कहानी है कि हम रूहानी तौर पे बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो जाती है तो हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। इस बात को आप याद रखें, इस बात को याद रखें। और हम जानते हैं कि आज के दौर में ये शहर जो है इस तरह से लगता है बड़ा अच्छा शहर है, हम वहां पे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गर्द बहुत होती है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि चूंकि वहां का टेम्परेचर जो है वो बड़ा गर्म होता है, इसलिए वहां की खजूरें बहुत मशहूर है। हम जब भी जाते हैं वहां से खजूरें खरीद के लाते हैं, और अगर आप कभी कभी ये खजूरें जो है इसराइल की ये कॉस्को में भी आती हैं, और अगर आप वहां से आप देखें बड़ी अच्छी खजूरें होती है, अच्छी क्वालिटी की खजूरें हैं जो कि वहां से आती हैं, और ये जेरिको से ही आती हैं वो खजूरें। ये तो उसकी अच्छी बातें हैं, लेकिन जेरिको जो है वो आज जो है वो फिलिस्तीनियों के हाथ में है, उनकी वहां पे हुकूमत है, इसलिए वो इतना कोई खूबसूरत शहर नहीं है। वो इसी तरह से है जैसे हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ शहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आपको नहीं आती। लेकिन आइए हम यहाँ जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दो दिन यहाँ पे ठहरे हैं, दो रातें ठहरे हैं, और वहां पे उन्होंने और भी काम किए हैं जो कि बहुत जानने वाले काम हैं। एक तो उन्होंने, आपको मालूम है, जकी जो था उसके घर में उन्होंने शायद नाइट स्पेंड की है, और उसको वो गूलर के दर पे था तो उसको कहा था कि आज तेरे घर में निजात आई है। इस पे गौर कीजिएगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज तेरे घर में निजात आई है, निजात का मतलब क्या है? निजात का मतलब है कि आप गुनाहों से आपका छुटकारा हो जाता है और आप खुदा के साथ जिंदगी बसर करते हैं। ये निजात है, ये सैल्वेशन है जो कि आपको खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है। सो हम यही देखना चाहते हैं कि आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो वाक्या है, ये यरूब पे हमने वो जगह देखी है। यरूब भी जाके कितनी दफा गए हैं, हर दफा जाते हैं, तो यरूब से भी हम एक दिन वहां पे स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे ये शख्स जो है ये वहां पे बैठा हुआ है राह के किनारे, और बहुत भीड़ है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। आपको मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह की अब मिनिस्ट्री जो है वो खत्म होने वाली है, वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि ये ईद पसा का टाइम है, पैसओवर का टाइम है, और पैसओवर का टाइम में यहूदी लोग जो हैं वो सब के सब यरूशलेम आते हैं सारी दुनिया से, और वो जो पैसओवर ईद जो है फेस्टिवल जो है वो मनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ये शख्स जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और चिल्ला चिल्ला के एक बड़ी स्पेशल बात वो कह रहा है। और वो क्या कहता है? मगर वो और भी चिल्लाया, उसे लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और हम जानते हैं कि जब उसने इतना पुकारा तो खुदावंद यीशु मसीह को उसकी आवाज आई इतने शोर में, जबकि बहुत गम में गफीर था, बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को आवाज पहुंच जाती है तो खुदावंद यीशु मसीह उसके रुक जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए। जानबूझ के उनको मालूम है कि क्या चाहिए, लेकिन वो जानबूझ के पूछते हैं, वो चाहते हैं कि वो बताए कि उसको क्या चाहिए। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तेरे लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं, यानी कि मैं देखना शुरू कर दूं। लगता ऐसे है कि ये आदमी जो है ये पहले बीना था, लेकिन उसके बाद उसकी बिनाई जाती रही है। और एक वजह ये भी है कि यरू जो है, जेरिको जो है, उसका मौसम बहुत बहुत चूंकि गर्म है, और हम जानते हैं जब गर्म मौसम होता है तो गर्द बहुत होती है, देर इज लॉट ऑफ डस्ट, और डस्ट की वजह से एक बीमारियां आपको आंखों की बीमारियां लग जाती हैं, और यहां तक कि इसको जैसे मेडिकल टर्म में गनोरिया ऑफ द आइस कहा जाता है, उसको शायद वो हो गया है, उसको नजर नहीं आता। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसको शिफा दे देते हैं, उसको कहते हैं क्या कहते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और उसी दम वो बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। क्या वो लोग जो शिफा पा चुके हैं, जो शिफा पाना चाहते हैं, क्या वो उसके पीछे होना चाहते हैं? यहां तक के लोगों ने भी देखकर खुदावंद की हम्द की। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद खुदा है, वो इब्ने दाऊद हैं। ये जब उसने ये कहा है, क्या कहा है कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इस पे मैं बात करूंगा कि खुदावंद यहूदी लोग जो हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो इंतजार में हैं, वो इंतजार में है कि कोई मसीहा आए, और उनको वो तो ये चाहते थे कि तबाही तौर पे चाहते थे कि उस वक्त रूमी हुकूमत से छुटकारा दे। लेकिन जब हम पुराने अहदनामे में जानते हैं तो वहां पे पेशन गोईयां की गई हैं कि आए वो एक इब्ने दाऊद आएगा और वो इनको छुटकारा देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का आना ऐसा नहीं था कि वो रूमी हुकूमत के साथ लड़ाई करते। देखो, मसीहत में कोई लड़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। मसीहत में जो कॉन्सेप्ट है वो लड़ाई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो रूहानी लड़ाई का कॉन्सेप्ट है। रूहानी लड़ाई का कॉन्सेप्ट क्या है? और रूहानी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इफिसियों के खत में मिलता है, और इफिसियों का खत उसका छठा बाब और उसकी मैं चंद आयात आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। मेरे भाई और मेरी बहन, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी लड़ाई किसी शख्स से नहीं है, किसी कौम से नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो हमें सिखाया कि हम सबको प्यार करें, लेकिन जब लोग जो हैं उस शैतानी कुव्वतों में घिरे हुए हैं, शैतानी, वो लिखा हुआ है कि आसमानी मुकामों में हैं वो रूहानी फौजें, वो हाकमों शरारत की उन रूहानी फौज, इसलिए हमें स्पिरिचुअल जो है वो हमारी बैटल जो है वो 24 आवर्स चलती है, जो कि हम शैतान के हम अपने अपने साथ जो है हमारे दिलों में लड़ाई होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये बीमारियां कहां से आई हैं, तो पौलुस रसूल हमें बताते हैं रोमियों के खत में कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ये बीमारियां जो है, एक वजह इसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि गुनाह की वजह से है, और हम नहीं जानते कि इस शख्स ने क्या गुनाह किया था या क्यों ये जो है अंधापन इसको मिल गया था। लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसके पीछे गुनाह है, उसके पीछे गुनाह है। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि अगर और वो मौरूसी गुनाह भी आपका चला आता है, आपकी अपनी हरकतों से अपने गुनाह जब हम करते हैं, अगर कोई शख्स जो है वो बहुत शुगर का इस्तेमाल करता है तो उसको शुगर होगी, अगर कोई शख्स जो है बहुत शराब पीता है तो वो क्या, वो जब इतना हो जाएगा तो वो शराबी होके तो उसकी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं एक शख्स को जानता हूं कि उसने बहुत ज्यादती करनी शुरू कर दी और अब उसका जो है ब्लड कंट्रोल नहीं होता। ये बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप में शुगर है या डायबिटीज है या डायबिटीज है तो वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। हम नहीं जानते कि बीमारियां जो हैं वो कैसे आती है। हम ये जानते हैं कि बीमारी जो है वो गुनाह का नतीजा है, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको तंदुरुस्त कर दिया है तो वो सिर्फ ये नहीं कि उसकी फिजिकल बीमारी को उन्होंने तंदुरुस्त किया है, बल्कि हम जानते हैं कि वो जो है वो फिजिकल तौर पे और रूहानी तौर पे भी तंदुरुस्त हो चुका है। और क्या हुआ है कि वो उनके पीछे हो लिया है और उसने कहा है कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज हमें हर शख्स जो है वो बीमार है, हर शख्स वो जो है वो अंधा है। क्यों, कैसे अंधा है? वो अपनी आंखों से तो तबाही आंखों से तो ये फिजिकल आंखों से तो देख सकता है, लेकिन अगर उसकी दिल की आंखें आप खोल के देखें तो उसमें बोगस पाया जाता है, उसमें हर तरह का गुनाह पाया जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर शख्स अंधा है और रूहानी तौर पे अंधा है। उसको जरूरत है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को पुकारे और खुदावंद यीशु मसीह उससे खुद आके तो बात करेंगे, खुद आके उसको कहेंगे तू क्या चाहता है। तो आप जानेंगे बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा है और उनकी तमाम की तमाम जो रूहानी बिनाई है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी है और अब वो खुदा को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपको शैतान के आप उसके उसमें बॉन्डेज में हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें हम ताकि हम देख सकें, गो कि हम जिंदा होते हुए इस जिंदगी में रहते हुए लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस के अभी तो हमें धुंधला दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आएगा कि हम खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे और आप देखेंगे कि एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू यू। आपको इस दुनिया के शैतान ने अंधा कर दिया हुआ। ये शख्स जो है ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और हम जानते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की कहूंगा कि आखिरी मिरेकल थी। पहली मिरेकल हमें मालूम है कि कहां से शुरू हुई थी, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया था, जब काना ए गलील में उन्होंने पानी से मैं बनाई थी। उसके बाद उनकी अलूहियत जो है वहां पे हमें जाहिर होती है, उनकी डिविनिटी वहां पे हमें जाहिर होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लाइनें लग गई लोगों की जिनको के जरूरत थी कि उनको शिफा दी जाए, और यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी है। आखिरी बात ये कहूंगा कि वो कहता है कि आए इब्ने दाऊद, और जैसे मैंने बताया कि यहूदी लोग मसीहा की तलाश में थे, इब्ने दाऊद का मतलब है मसीहा, वो जो आने वाला मसीहा है। और इस शख्स को पता है कि ये इब्ने दाऊद है, उसने सुन रखा है कि एक शख्स है जिसका नाम यीशु अल मसीह है, वो लोगों को शिफा देता है, वो लोगों के गुनाहों को माफ करता है, वो यहां तक के मुर्दों को जिंदा कर देता है। क्या आप ऐसे मसीहा को जानेंगे? क्या आप ऐसे मसीहा को जानने की कोशिश करेंगे? आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसके मुतालिक आप सोचें। और ये नहीं कि यही सिर्फ शख्स जो है उसने कहा है इब्ने दाऊद, अगर हम सारी बाइबल का मुताला करें तो हमें मिलता है जब हम उस नसब नामे को पढ़ते हैं जो कि हमें मत्ती रसूल बताते हैं, जो पहले बाब में नसब नामा है, और जो लूका रसूल बताते हैं तीसरे बाब में, वहां हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक जो है वो इब्ने दाऊद हैं, कि उनके जो पेरेंट्स थे मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम जो हैं वो दाऊद की नस्ल से आते हैं, इसीलिए वो इब्ने दाऊद हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं कि मत्ती रसूल की इंजील उसका 15वां बाप, तो वहां पे भी एक औरत है, फिनिशियस औरत है, वो जो है फिनिके की, वो भी पुकार उठती है कि आए इब्ने दाऊद मेरी बेटी को तंदुरुस्त कर। उसके अलावा जब खुदावंद यसुम सी खुद हम कलाम होते हैं और यूना रसूल से, तो आखिरी जो आखिरी बाब है बाइबल मुकद्दस का, जो कि 22 बाब है, और वहां पे हमें मिलता है कि किस तरह से 20वां बाब जो है उसकी 30 आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 22 बाब, 22 बाब और उसकी 16वीं आयत जो है हमें इस तरह बताती है, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि वो कहते हैं मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे कि दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि वो दाऊद की नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। मेरे भाई और मेरी बहन, आपके मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वही शाफी हैं, वही आपको शफा दे सकते हैं, यहां तक और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी जान जो है मेरे और आपके लिए सलीब पे दी है। लेकिन जब तक हम उन्हें अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, ये उनकी जो मौत है उनका मुर्दों में से जी उठना जो है वो कारगर आप पे नहीं होता। इसलिए आज जरूरत है कि आप उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और आपकी बीमारी जो है वो दूर हो जाए, आपका अंधापन जो है वो दूर हो जाए, रूहानियत का अंधापन। आप तो कहेंगे मैं मुझे तो सब कुछ नजर आता है। मेरे भाई, अगर आप अपने दिल में जान के देखें, और आपको पता होगा कि जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते आप अंधे हैं, आप अंधे हैं, तभी उनकी मौत, उनके मौत पे फतह हासिल करना उस पे आप पे कारगर होगा और आप सही तौर पे रूहानी तौर पे देख सकेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, और वो ये है, जैसे कि शुरू में भी अनाउंसमेंट की गई है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हम अब इस फरवरी से के एंड से इस रजिस्ट्रेशन पे नहीं हो सकेंगे, और उसकी वजह यह है कि अब हमारे फंड्स जो हैं वो इतने बर्दाश्त नहीं हम कर सकते कि हम इस कंटिन्यू गो के हम 13 साल से इस रेडियो पे हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा प्लेटफॉर्म चेंज होने वाला है और वो प्लेटफॉर्म जो है मोस्ट प्रॉबली यूट्यूब पे हम जाएंगे या फेसबुक पे होंगे, और वहां पे हम आपको लिंक भेजेंगे। आप अगले 1-2 हफ्तों में, जब तक हम फरवरी के आखिर तक हैं यहाँ पे, आपको हम लिंक भेजेंगे, आप फेसबुक पे आप हमें लाइक करें, और आप वो जो लिंक यूट्यूब की है वो भी हम आपको देंगे ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं जो आपको मिलते रहें, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपके पास हमारे फोन नंबर हैं, आपके पास हमारी ईमेल एड्रेसेस हैं, आपके पास और फेसबुक है, हमारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी की सारी पे हम मौजूद होंगे और आपसे हम जुड़े रहेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन,
आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने दोबारा अनाउंसमेंट की ताकि लोगों को पता चल जाए, और लेकिन ये भी हम बताना चाहते हैं कि हम आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इससे पेशतर कि मैं भाई साहब से कुछ बात करूं, हम एक गीत सुनते हैं और उसके बाद शिफा के मुतालिक है। सुनिए, ये शिफा हर इंसान को चाहिए गुनाहों से सबसे बढ़कर। तो ये हम एक गीत सुनते हैं, फिर मैं भाई साहब से बात करता हूं।
से उसके पाए जिसका जी चाहे, शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मेरे कहने पे क्या है आजमाए जिसका जी चाहे, शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मरीजाने गुनाह को दो खबर फैजे मसीहा की, मरीजाने गुनाह को दो खबर फैजे मसीहा की, दिलाते मत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे, दिलाते मत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे, शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे।
सामिन आपने खूबसूरत गीत सुना कि अगर किसी ने शिफा पाना है तो खुद हम यीशु मसीह के पास आए। आज का मैसेज भी यही था और मैं जल्दी से अनाउंसमेंट करके भाई साहब से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अभी दो मिनट हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर इतवार हमारे साथ होते हैं और खुदामन के जिंदा कलाम से सुनते और बरकत पाते हैं, और जैसा कि हमने अनाउंसमेंट की है کہ ہم آنے والے ہفتے میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کس طرح آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جسٹ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ ہمیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پائی صاحب سے بات چیت کریں. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 416-454-2581 ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، اور میرا ٹیلی فون نمبر 647-339-0397 ہے. اگر آپ کو بائبل مقدس کی کاپی چاہیے، جیسا پائی صاحب نے کہا ہے، دعا آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں، پائی صاحب ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. اور یہ بھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، جس کے وسیلہ سے یہ پروگرام چلتا رہا ہے، ان کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور خدا ان کے زندہ کلام سے برکت پاتے رہیں. میں پائی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑے اچھے حوالہ جات دیے ہیں، اندھوں کو شفا خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، اور یوحنا رسول میں بھی لکھا نامے باپ میں، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تو اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام ظاہر ہوں. یہ خداوند کے کام ظاہر ہونے کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. پھر اس نے تھوکا اور زمین پر تھوکا اور مٹی دی اور اس سانی اور اس کی آنکھوں پر لگائی، اور اسے کہا جا شلوخ کے، جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، حوض میں دھو لے، اور جا کر دھویا اور بینا ہو گیا. وہ حوض آپ نے بھی بڑی دفعہ دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور وہاں بہت بڑی بھیڑ ہوتی تھی اس کے زمانے میں، اور وہ نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہ خداوند کا جلال بھی ظاہر ہوتا ہے جب وہ ایسے لوگوں کو شفا دیتے ہیں، جس طرح کے لازر کو انہوں نے زندہ کیا، وہاں خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ گھنٹی تو بج گئی لیکن آپ شعور ذرا جواب دے دیجیے.
صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو معجزات ہیں وہ ایک تو گناہ کی وجہ سے ہیں، دوسرا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں کتنی پاور ہے، اور جب ان کی پاور جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ، جیسے یہ شخص جو ہے اندھا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کی پاور کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ بینائی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے ہو لیا. اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خداوند کے پیچھے.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
770 ambient نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، سوفا سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ، برامٹن، 9058747171.
ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।